जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय प्रभु
दूसरी बात यह है कि भगवान के विभिन्न रूप परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार भी होते हैं। जहां पे पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाना था तो वराहदेव के रूप में आ गए भगवान, वही श्री कृष्ण। जहां पर प्रलय जब सारे पृथ्वी में फैल गया था तो राजा सत्यव्रत और जितने भी साथ में मुनिगण थे उनको जल के ऊपर सारे पृथ्वी में घुमाने का समय आया तो मत्स्य अवतार उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो प्रत्येक अवतार के ऐसे कोई न कोई विशेष उद्देश्य होते हैं। नरसिंह देव प्रकट हुए केवल प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए मुख्यतः भगवान नरसिंह देव के रूप में नहीं प्रकट हुए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। और साथ साथ जब आए ही हैं तो अब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध करना आवश्यक पड़ा तो कर लिया। परंतु हिरण्यकश्यप इतने महत्वपूर्ण, इतने बड़े बड़े व्यक्ति नहीं थे कि उनके लिए खास भगवान को आना पड़े। प्रहलाद छोटे बच्चे थे, 5 साल के, फिर भी इतने महत्वपूर्ण थे भगवान की दृष्टि में कि केवल उनकी रक्षा करने के लिए भगवान इतनी दूर से आ गए। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो, और उनके भक्तों से भी प्रार्थना करते हैं, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि इस विशेष अवतार का या भक्त का भाव क्या है, उनका अवतीर्ण होने के पीछे उद्देश्य क्या है। जैसे हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त, तो उनकी जो दासत्व की भावना है, उनकी जो निष्ठा है सेवा करने के लिए भगवान श्री राम की, उनका जो प्रेम है, उनका जो साहस है भगवान की सेवा करने में इत्यादि, उनके तो अनगिनत ऐसे गुण हैं। तो जब हम रक्षा पाना चाहते हैं इस तरह से तो हनुमान जी के पास जाते हैं। उसी प्रकार जब रक्षा चाहते हैं तो नरसिंहदेव भगवान के पास अनेक बार कृष्ण भक्त जाते हैं। तो क्या श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते? उनको नरसिंहदेव का रूप लेना पड़ता है रक्षा प्रदान करने के लिए? ऐसा नहीं है। अवश्य श्री कृष्ण वृंदावन के रूप में भी रक्षा करते हैं, परंतु भक्तों का भाव क्या है, उनको कष्ट क्यों दें? वहां व्यस्त है ना श्री कृष्ण वृंदावन में, क्या कर रहे हैं? गायों को चरा रहे हैं, अपने ग्वाल वाल मित्रों के साथ खेल रहे हैं, माता यशोदा नंद बाबा को आनंद प्रदान कर रहे हैं, गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं, यमुना में रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण वहां पे केवल आनंद ही आनंद लेते हैं अपने दिव्य लीलाओं में। तो वहां जाके उनसे कहे, हे कृष्ण हमें बचाइए, हमें कोई कष्ट है, ये है, तो अरे भगवान बोले बांसुरी बजा रहा हूं, कहां ये आगे पीछे क्या बोल रहा है, मैं रासलीला कर रहा हूँ, ये बोल रहे मुझे बचाइए, पैसे की तंगी है, पेट में दर्द हो रहा है, घर में चोर आ गया, है ना। तो भक्तों के भाव की बात, कभी कभी क्या होता है, हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं ना तो कहते हैं दफ्तर में मिल लीजिए मुझे, ऐसे होता है ना। क्योंकि घर में घर के काम है, घर का वातावरण है, ये कितना अच्छा है, ये सब चीजों के लिए घर में मैं ये सब काम नहीं करूंगा, दफ्तर में आ जाइए, क्योंकि दफ्तर में ये सारे काम मैं करता हूं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अवश्य करते हैं। कितने सारे असुरों ने आक्रमण किया, ब्रजवासियों के ऊपर प्रहार किया, प्रतिदिन कोई ना कोई असुर वृंदावन में आते हैं। परंतु श्री रूपा जैसे समझाते हैं श्री कृष्ण वृंदावन में जब असुरों की हत्या करते हैं, उनका वध करते हैं, तो वृंदावन के कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्व कारण कारण है, समस्त अवतारों के
हैं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक पता है ना, मृडयंती युगे युगे, तो युग युग में भगवान आते हैं। कितने सारे अवतार होते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोग, इंद्रारी क्या है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम। तो जब इंद्र के जो शत्रु होते हैं उनके द्वारा सब कष्ट हो जाता है सारे दुनिया में ब्रह्मांड में, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण एते च अंश कला पुंसम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जितने भी भगवान के अन्य रूप हैं, पुरुष अवतार हैं और अन्य जितने भी अवतार हैं, वो सब अंश हैं या अंशों के अंश हैं भगवान के, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का तात्पर्य ये है कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं, विस्तार हैं, वो उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान हैं जिनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं, तो ये सारे के सारे अवतार और विस्तार श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में सम्मिलित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वृंदावन के श्री कृष्ण जब आते हैं तो विष्णु कोई अलग हैं, नरसिंह देव कोई अलग हैं। अवश्य जब भगवान विस्तार करते हैं तो इनके जो विस्तार हैं वो भी सनातन रूप से विद्यमान रहते हैं, फिर भी जब श्री कृष्ण वृंदावन में होते हैं ते सारे अवतार उनमें रहते हैं। और जब असुरों के का वध करने का समय आता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के अंदर जो विष्णु स्वरूप हैं वो वास्तव में ये कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में केवल एक ग्वाल बाल की भूमिका निभाते हैं, जो कि उनका सनातन भाव है वृंदावन में। जब ब्रह्मा जी भी आए, वो तो कृष्ण तो केवल साधारण ग्वाल बाल की तरह खेल रहे थे। अरे ये कौन आ गए चतुर्मुख, इतने तेजस्वी ऊपरी लोक से आए, और देवता देवलोक आके उनकी आरती वगैरह उतारते थे वृंदावन में जब वो गाय चराने के लिए जाते थे। परंतु श्री कृष्ण का भाव वृंदावन में क्या है, मैं एक गोप हूं, ग्वाल बाल हूं। इसलिए ये सारे असुरों को वध करने की जो समस्या है वो उसमें कृष्ण नहीं पड़ते हैं, कहते मुझसे ये सारी चीजें दूसरे ले लो। काश हम सब भी ऐसे कर सकते थे, घर में बैठे और अपने आप को विस्तार कर लें और विस्तार को कहें कि भाई मैं घर में रह के आराम करूंगा, आप दफ्तर में जाओ, जो भी समस्या है, लेन देन है, ये है वो है, आप संभालो, मैं यहां बैठ के आराम करता हूं। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, जाना पड़ता है दफ्तर, कमाना पड़ता है। परंतु भगवान भगवान है, इसलिए इस प्रकार से अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। और उसी तरह से यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर गोविंद वृंदावन के कृष्ण नंदनंदन कृष्ण, वो भी हम ये हमारी रक्षा कर सकते हैं और करते हैं और वास्तव में वही करते हैं, फिर भी जब सुरक्षा की बात होती है तो भगवान के विविध रूप हैं जो कि रक्षा प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हम नरसिंह देव के पास आते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जगह जगह में देश विदेश में मंदिरों का निर्माण हुआ, भक्त लोग सड़कों पर जाते थे पुस्तक वितरण करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, और बहुत बड़ी संख्या में लोग भक्त बनते जा रहे थे, विशेष करके जो युवा पीढ़ी थी। तो इन विविध स्थानों में इन विविध स्थानों में ऐसे कई स्थानिक लोग थे जिनको चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, ये इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो आगे चल के उत्पात होगा। और जिनके बच्चे भक्त बने थे वो भी शिकायत करने लगे कि इन्होंने कुछ जादू टोना कर दिया, काला जादू कर दिया, कुछ हमारे बच्चों को बहकावे में डाल के उनको भक्त बना दिया इत्यादि। और कई बार ऐसे भी हुआ, खास करके मायापुर में आक्रमण किया भक्तों ने, क्षमा कीजिए डकैतों ने। तो इस प्रकार से तरह तरह की समस्याएं हो रही थीं। तो उस समय प्रभुपाद जी ने पहली बार कहा कि आप नरसिंह प्रणति रोज मंदिर में गाइए सुबह शाम। उस समय से ये प्रथा हमारे संस्था में, हमारे मंदिरों में शुरू हुई। प्रारंभिक सालों में, शुरुआत के सालों में ये नरसिंह प्रणति नहीं गाई जाती थी, केवल संसार दावा, हरे कृष्ण महामंत्र, तुलसी पूजा इत्यादि। थोड़े समय के बाद प्रभुपाद जी ने ये नरसिंह प्रणति प्रारंभ करने का आदेश दिया। क्यों? प्रभुपाद जी भी कह सकते थे ना, केवल कृष्ण की ही प्रार्थना करो, केवल हरि नाम का ही आश्रय ले लो। हरि नाम तो पूर्ण तरह से भगवान से अभिन्न होने के कारण समर्थ है भक्तों की रक्षा करने के लिए। और अवश्य हम जब हरि नाम लेते हैं उस समय भी हम रक्षा के लिए याचना करते हैं हरि नाम से, और करना भी चाहिए। परंतु विशेष रूप से जब हमें किसी प्रकार की रक्षा चाहिए होती है तो भगवान नरसिंह देव के पास जाते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान के विविध अवतारों के मंदिरों में जाते हैं, वहां की लीला स्थलों में जाते हैं, तो ये एक बात हमें याद रखना है कि नरसिंह देव और कृष्ण में अंतर नहीं, श्री राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, वही भगवान है ये। जैसे पहले दो चार दिन पहले हम बता रहे थे, शायद मंदिर में होगा, ये घर और दफ्तर का अंतर मात्र है। तो यहां पर भगवान विराजमान है लक्ष्मी नरसिंह देव के रूप में। लक्ष्मी देवी का मंदिर थोड़ा सा यहाँ बाहर की ओर है, और शिला के रूप में वहां नरसिंह देव विराजमान है अंदर। तो स्कंद पुराण के तुंगा महात्म्य में यहां का इतिहास बताया गया है। तो यहां पर पहले तीन नदियां बहा करती थी, पुष्पा, गोपिका और जयंती। तो ये तीन नदियां बहती थीं, उसमें भरपूर पानी हुआ करता था और हरा भरा था ये सब कुछ। यहां पर एक मुनि भ्रमण करते करते आए इस स्थान में लगभग, और यहां पे एक वट वृक्ष था, तो बहुत विशाल उसकी जो डालें थी, शाखाएं थी, बहुत विस्तृत हो गई थी। तो इस स्थान को बहुत उपयुक्त मानकर उस ऋषि ने यहाँ बैठना ठीक समझा, तो अपना निवास यहीं पर बनाया और उस वटवृक्ष के नीचे बैठ के वो अपनी तपस्या करते। ऐसे समय बीत गया। फिर हुआ ये अनेक वर्षों के बाद कि इस सारे प्रांत में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो ये तीनों जो नदियां थीं, जयंती, गोपिका और पुष्पा, ये सूख गई। सब जगह अकाल पड़ने के कारण ना कोई खेती हो पा रही थी, ना पेड़ भी उनकी भी मृत्यु हो रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए नहीं था। तो सारे लोग बहुत ही बेचैन हो गए, बहुत ही पीड़ित अवस्था में यहाँ वहाँ घूम रहे थे कि कहीं कुछ भोजन मिले, कुछ जल मिले, इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तब ऐसे भ्रमण करते करते वो इस स्थान पर आए और उन्होंने देखा कि सब जगह सब कुछ सूखा हुआ है, परंतु केवल इस स्थान में ये एक वट वृक्ष है, ये बहुत हरा भरा है, और यहाँ पे एक साधु बैठे हैं और ये अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके साधु से निवेदन किया कि देखिए इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर है, तो कृपया आप हमें मदद कीजिए। तो साधु ने कहा, अवश्य आप सबकी पीड़ित अवस्था को देखा नहीं जा रहा है। तो तो वैष्णव का ये गुण होता है कि दूसरों का दुख है, दूसरों का कष्ट वो सहन नहीं कर पाता, इसे वैष्णव कहते हैं। उस दिन हम नरसिंह मेहता की बात कर रहे थे ना, भक्ति के विस्फोट की चर्चा जब हो रही थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जाने रे, पराए जो अन्यों के पीड़ा को जो समझ लेते हैं, जानते हैं और उसमें उनको दुख का अनुभव होता है तो वो वैष्णव होता है। यदि वैष्णव को अन्यों के दुख से दुख नहीं होता तो वो वैष्णव नहीं हो सकता। भले वो कृष्ण या विष्णु की आराधना भी कर रहा हो, केवल औपचारिकता से वो वैष्णव कहला सकता है, परंतु वास्तव में वो वैष्णव नहीं है। तो उनको उनके मन में दया उत्पन्न हुई कि यहाँ ये लोग इतने तड़प रहे हैं, तो उन्होंने तीव्र प्रार्थना की भगवान की। और थोड़े समय बाद भगवान प्रकट हुए उनके सामने, और जब प्रकट हुए तो फिर मुनि ने, वो प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए मुझसे। तो मुनि ने कहा कि मैं आपसे चार चीजें मांगना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यहां जो अकाल या सूखा पड़ा हुआ है इसको समाप्त कर दीजिए, यहां जल प्रकट हो जाए, नदियां बहने लगें, सरोवर भर जाएं पानी से, और लोगों के प्यास जो है वो बुझ जाए। दूसरा वरदान जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ लोग बहुत दरिद्र हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, क्योंकि इतना अकाल पड़ गया, इतने सालों से कोई धन नहीं है। उस समय आप जानते हैं जब कृषि प्रधान समाज हुआ करता था तो संपत्ति क्या हुआ करती थी, और धन का मापदंड क्या था, गवयो धनवान धान्य धनवान, जिसके पास धान्य है प्रचुर मात्रा में और जिसके पास गाय है वो धनी है। तो जब अनाज ही नहीं है, जब सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है और गाय कहाँ से रहेंगे, गायों की भी मृत्यु हो चुकी होगी, तो कोई अमीर नहीं था यहाँ पर। तो दूसरा वरदान मांगा यहाँ पे कि यहाँ की दारिद्रता को कृपया आप समाप्त कर लीजिए। तीसरा वरदान जो मुनि ने मांगा भगवान से वो ये है, क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है तो आप कृपया कनक सोने के सिक्कों की वर्षा कीजिए आप यहाँ, ताकि यहाँ लोग फिर से धनी हो जाएं, सुखी हो जाएं। हाँ, याद रखिए ज़्यादा धनी होना भी मुश्किल है बहुत, उससे भी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। और चौथी बात उन्होंने कही कि हे भगवान, आप ये वरदान दीजिए कि आप यहीं पर प्रकट होंगे और यहीं पर रहेंगे और इस स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर वो प्रकट हुए एक शिला के रूप में और वहां पे आराधना शुरू हो गई। वहां पे सब कुछ हरा भरा होने लगा सब जगह भगवान की कृपा से, और फिर लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो इसलिए इस स्थान का नाम हुआ कनकगिरी। छोटा सा पहाड़ यहाँ पे हुआ करता था, कनकाचल या कनकगिरी, कनक अर्थात सुवर्ण, या सुवर्णाचल, सुवर्णगिरी इत्यादि। फिर यहाँ पर भगवान की उपासना तो हो रही थी। उधर ऐसे थोड़ा समय बीत गया और फिर यहाँ पर एक व्यक्ति थे, थोड़े समय के बाद यहाँ वन फैल गया, जंगल। बहुत सारी पीढ़ियाँ बीती होंगी, लोग यहाँ से थोड़े इधर उधर चले गए होंगे, तो जंगल सब जगह पेड़ इधर उधर हो गए। और फिर यहाँ जंगल होने के कारण किसी को यहाँ रहता नहीं था। तो एक बार हुआ ये कि बहुत बाढ़ आ गई यहाँ पर, तो बाढ़ के कारण तीनों ही नदियों में, शायद तीनों नदियाँ भी उस समय रही होंगी, जयंती, गोपिका और पुष्पा, तो बाढ़ होने के कारण जो है यहाँ एक वाल्मीकि होता था। वाल्मीकि जानते हैं ना, चींटियों का जो घर होता है उसको वाल्मीकि कहते हैं, जिसके पीछे वाल्मीकि मुनि का नाम है। और उस वाल्मीकि में यहाँ भगवान का जो की जो शिला है वो ढकी हुई थी, इसलिए लोगों को पता नहीं था। तो जब ये बाढ़ के कारण ये वाल्मीकि जो है वो धुल गया और लोगों को दिखाई पड़ा कि यहाँ पे एक शिला है, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए और उस शिला की उपासना करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और एक वर्णन ये है, और ये कथा अनेक तीर्थ स्थानों में पाई जाती है, जैसे कि तिरुपति इत्यादि, वृंदावन में भी गोविंद जी के मंदिर के संबंध में भी ऐसे कहा जाता है, तिरुमला में भी बालाजी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपने गाय को चराने के लिए ले आता था और गाय यहाँ पर स्थान में आके जहाँ वाल्मीकि था वो गाय वहाँ पर दूध छोड़ती थी। तो लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि ये क्यों ऐसा कर रही है। तब उन्होंने उस जगह में जाके जांच की तो पता चला वहाँ पर ये शिला है भगवान की। खैर जो भी हो, दोनों में से कोई भी वर्णन सही हो या दोनों सही हो, फिर वहाँ पे ये शिला प्रकट हो गई। फिर से लोग यहाँ रहने लगे और बसप्पा नायक करके एक व्यक्ति थे, वो भी गायों को चराते थे, गोयाल थे गोयाल। वो यहाँ जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ शिला है, तो बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ उन्होंने इनकी उपासना करना प्रारंभ कर दिया। उनके कोई संतान नहीं थे, तो यहाँ भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे कोई संतान दीजिए। यहाँ मुनि भी रहते, मुनि उस समय शायद नहीं थे, काफ़ी समय बीत गया था, तो वहाँ भगवान की कृपा से उनको एक आम मिला, प्रसादी आम, ये आम आपके पत्नी को दे दीजिए। तो पत्नी ने वो आम तो खा लिया, परंतु आपको तो पता है जब हम आम खाते हैं तो छिलका और बीज नहीं खाते हैं, केवल आम खा लेके फिर बीज छिलका फेंक देते हैं। तो उस बसप्पा नायक के पत्नी ने भी ऐसे ही किया, तो शीघ्र ही वो गर्भवती हो गई, उनको एक बहुत अच्छा बच्चा मिल गया और बसप्पा नायक और उनकी पत्नी दोनों संतुष्ट हो गईं। उधर वो छिलका जो था, छिलका और बीज वहाँ एक घोड़ी ने खा लिया, घोड़ी यहाँ वहाँ भ्रमण कर रही थी तो घोड़ी ने खा लिया। और थोड़ी देर बाद वो भी गर्भवती हो गई और उसने जन्म दिया, परंतु एक मांस के टुकड़े का जन्म दिया। तो सभी लोग सोचने लगे कि ये क्या हो गया, ये घोड़ी से के गर्भ से तो घोड़ा होना चाहिए, ये मांस का टुकड़ा कैसे आ गया। तो उन्होंने जाके इस मांस के टुकड़े को यहाँ पर रखा। तब तक यहाँ पर लक्ष्मी देवी थी, उस समय थी ना, लक्ष्मी देवी थी यहाँ पर उस समय भगवान के साथ। उस समय तक ये पता चला था कि नरसिंहदेव भगवान है, क्योंकि लगभग उस समय बुक्का राय और हुक्का राय, हरिहर राय, जिनकी चर्चा हमने की थी, वो हम्पी में राज कर रहे थे और उन्होंने सुना कि यहाँ के जो विग्रह हैं ये बहुत शक्तिशाली हैं, कृपालु हैं, तो वो भी आया करते थे यहाँ पर। तो इसलिए उनकी सहायता से भी यहाँ बहुत कुछ होने लगा। तो फिर बाद में लक्ष्मी देवी की मूर्ति यहाँ पर आई, पहले तो केवल नरसिंह देव थे। उन्होंने पंडितों से पूछा कि ये शिला है, कौन सी शिला है ये, तो पंडितों ने जांच कर ली, फिर उन्होंने कहा ये नरसिंह शिला है। तब जाके लोगों को पता चला कि ये नरसिंह भगवान हैं जो कि यहाँ पर प्रकट हुए हैं। ऐसे कभी कभी होता है, जैसे बालाजी तिरुपति तिरुमला में भी पहले कई शैव आए, उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग है, परंतु रामानुजाचार्य जब वहाँ पे गए तो उन्होंने साबित करके दिखाया कि ये शिवलिंग नहीं है, ये वास्तव में भगवान विष्णु है। तो यहाँ पर भी बड़े बड़े पंडित थे, तो उन्होंने भी देखा और समझा कि ये नरसिंह शिला है, केवल साधारण कोई शिला नहीं है। और फिर आप देखेंगे, आपने जब दर्शन किया होगा तो नरसिंह देव का मुख है वहां पर, परंतु वास्तव में वो शिला है। तो जब ये शिला प्रकट हुई तो लक्ष्मी देवी नहीं थी, बाद में लक्ष्मी देवी आई यहाँ पर, कोई राजा शायद उन्होंने स्थापित की होगी लक्ष्मी देवी की मूर्ति को। तो फिर वो मांस का टुकड़ा लक्ष्मी देवी के मंदिर के बाहर रखा गया, और फिर अचानक ये देखा गया, जब वो मांस का टुकड़ा लक्ष्मी देवी के मंदिर को खोलने के बाद, कि यहाँ एक बच्चा है, मनुष्य बच्चा, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर बच्चे को पालने लगे। जब भी वो बच्चे को रोज लाते थे यहाँ पर मंदिर में, तो वो सीधे लक्ष्मी देवी के मंदिर तक जाता था, दरवाज़ा खुल जाता था, वो अंदर जाते थे, दरवाज़ा बंद हो जाता था, और ऐसे कहा जाता है, माना जाता है कि स्वयं लक्ष्मी देवी उस बच्चे को स्तनपान कराती थी। तो लक्ष्मी देवी ने उस बच्चे को अपना बच्चा मानकर स्वीकार किया, और ऐसे काफ़ी समय बीत गया। उधर बसप्पा नायक का लड़का जो है वो बड़ा हो गया, वो भी बहुत अच्छा इंसान और भक्त बन गया, और यहाँ ये बच्चा भी आगे चल के प्रसिद्ध हो गया किसी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से यहाँ ये कथा है। और तब तक विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने भी यहाँ बहुत प्रोत्साहन देना शुरू किया, इसलिए उन्होंने जाके मंदिर बनवाए यहाँ पर। यहाँ के नायक समाज के लोग रहते थे, वो भी थोड़े क्षत्रिय स्वभाव के थे, तो वो लोग भी विजयनगर राजाओं की सहायता करते थे, और विजयनगर राजा भी यहाँ आके इनकी सहायता करते थे, इनका देखभाल करते थे। उन्होंने यहाँ मंदिर के निर्माण करवाया, शायद ये भी उसी समय निर्मित हुआ होगा ना, कृष्णदेवराय के समय, उसके पहले तो लगभग उसी समय, उसके थोड़ा पहले इस मंदिर की निर्मिति हुई होगी। तो 500 साल से अधिक पुराना ये मंदिर है। तो ये संक्षेप में इस स्थान का इतिहास है। यहाँ पर दक्षिण भारत में, विशेष करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में थोड़ी हद तक नरसिंह देव के मूर्तियाँ और मंदिर बहुत सारे आपको मिलेंगे। भारत के अन्य भागों में विरला ही यहाँ वहाँ कहीं आपको मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में एक तो मिल जाएंगे, मायापुर में नरसिंहपल्ली आपको मिल जाएगी, यहाँ वहाँ एक दो मिल जाएंगे, परंतु यहाँ दक्षिण भारत में इतने सारे नरसिंह भगवान के मंदिर हैं और मूर्तियाँ हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब यहाँ स्थान में आ चुके हैं। मुझे भी बिल्कुल स्थान के बारे में जानकारी नहीं थी, तो अच्छा लगा कि आप सब के कारण मुझे भी आने का अवसर यहाँ पे मिल गया। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, श्री कनक गिरी की जय, गौर प्रेमानंदे। कोई बात छूट गई क्या? नहीं ना। हनुमान मंदिर का इतिहास क्या है पता नहीं, किसी ने बाद में स्थापित किया होगा, विजयनगर के राजाओं ने अवश्य किया होगा। ऐसे कोई प्राचीन इतिहास यहाँ के हनुमान मंदिर का तो हमने सुना नहीं है। तो जक्कनाचार्य नाम के किसी साधु ने, शिल्पकार थे, अच्छा शिल्पकार थे वो, तो उन्होंने स्थापित किया, ऐसा यहाँ के पुजारी कहते हैं। परंतु और इसका कुछ इतिहास बताया उन्होंने? हाँ, वो बने ही होंगे, जब भगवान के प्रसाद पाकर उनका जन्म हुआ तो निश्चित हुए होंगे। इसलिए प्राचीन काल में बच्चों का नाम जब दिया जाता था ना, देखिए एक बात है कि भगवान के पीछे बच्चों का नाम रखना, गोविंद, नरसिंह इत्यादि, परंतु वास्तविक यदि आप प्रथा देखेंगे तो ये था कि सीधे भगवान का नाम नहीं देते थे, उसके पीछे, उसके बाद में कोई एक शब्द रहता था, जैसे प्रसाद, दत्त, इत्यादि दास। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बच्चे का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम रखा बिमला प्रसाद। तो आप देखेंगे जगन्नाथ प्रसाद, राम प्रसाद, कृष्ण प्रसाद ऐसे नाम रखते थे, या कृष्णदास, गोवर्धन दास, या दत्त कि उनके द्वारा ये प्रदत्त है। क्योंकि सीधे हम किसी को बुलाएंगे गोविंद तो भगवान को ऐसे बुलाते नहीं है ना दास। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी जब यहाँ नाम दिए सारे भक्तों को तो सब उसके पीछे दास था। और हम जब बुलाते हैं तो प्रभु कह के बुलाते हैं, तो फलाना फलान जगन्नाथ प्रभु, वो कहेंगे जगन्नाथ दास। तो पूरा नाम है जगन्नाथ दास। तो ये दास हो या प्रसाद हो या दत्त हो,